आगे थी आयत 54 से 60, रुकू नंबर 11। कुरान नसीहत, शिफा और रहमत है। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत। अब इसको बड़ा प्यार से, बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा। और अगर हर जान जिसने जुल्म यानी शिर्क किया है उसके पास इतना हो कि सारी ज़मीन भर जाए, तब भी इसको देकर अपनी जान बचाने लगे, और जब अजाब को देखेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे, और इनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और इन पर जुल्म ना होगा। याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही की मलकियत है। याद रखो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से लोग इल्म नहीं रखते। वही जान डालता है, वही जान निकालता है, और तुम सब इसी के पास लाए जाओगे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग हैं इनके लिए शिफा है, और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह ताला की इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। वो इससे कई दर्जा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। खैरुम मिम्मा यजमाउन। आप कहिए ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिस्क भेजा था, फिर तुमने इसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे लिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था, या तुम अल्लाह पर झूठ बोहतान करते हो? और जो लोग अल्लाह ताला पर झूठा बोहतान बांधते हैं, इनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है? वाकई लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल है, लेकिन अक्सर आदमी शुक्र नहीं करते। क्या खूबसूरत आयतें। अब देखिए कि आज आखिरत तुम्हारे सामने नहीं है ना, इसलिए हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। जिस दिन एक इंसान संजीदा हो जाता है, उस दिन उसको आखिरत दूर नहीं करीब दिखती है। और जब आखिरत सबसे बड़ी हकीकत बनकर इंसान के सर पे टूट पड़ेगी, और आप उसकी सारी संगीनियों के बावजूद उसको देखने पे मजबूर होंगे, उस वक्त किसी को सरकशी याद नहीं रहेगी, किसी को मस्ती याद नहीं रहेगी, किसी को हल्ला गुल्ला याद नहीं रहेगा, और उस वक्त ये पूरी दुनिया जो हमारी गुजर गई हो चुकी होगी, ये हकीर मालूम होगी, जिसकी वजह से गफलत में पड़ गए और आखिरत के बारे में सोचने पे तैयार ही नहीं थे। हम अक्सर आखिरत का सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। तसव्वुर तो ज़हन में आता ही है ना, कभी कोई नई जगह होगी, कोई आईलैंड होगा, कोई उजाड़ बियाबान जगह होगी, दिल में यही आता है ना। हालांकि अब तक आखिरत किसी अजनबी जगह पे वाकई नहीं होगी, हमारी जानी पहचानी होगी, हमारे अपने ही लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे, हमारा अपना ही माहौल होगा, तभी तो यौमा या फिरुल मरु वाली कैफियत होगी ना। वहाँ वो सब चीज़ें हमें दिख रही होंगी जिसकी वजह से हमने सरकशी की होगी, वहाँ वो सारे लोग खड़े होंगे जिनको और खुश करने के लिए हमने अल्लाह को नाराज़ किया होगा, और क्या लगेगा, लम यल बसु इल्ला कलम हिल बसर, पलक झपकते में ये दुनिया गुजर गई। अल्लाह चाहता है कि आज इस किताब को दिलों की बहार बनाओ। ये आयते हैं 57-58, जिसपे एक बहुत ही मारूफ लेक्चर कुरान मेरे दिल की बहार है। आप नूरुल कुरान ऐप डाउनलोड कीजिए, मेन्यू बार में आपको मुख्तलिफ लफ्ज़ दिखेंगे, उसमें कुरान के लफ्ज़ को क्लिक करें, कुरान से रेलिवेंट चीज़ें उसके अंदर हैं। कुरान मेरे दिल की बहार एक शॉर्ट कोर्स होगा, बहुत शॉर्ट कोर्स है, ओनली 16 लेक्चर हैं उसके। उसका पहला लेक्चर है कुरान मेरे दिल की बहार, जो आपको इन आयात में मिल रहा है कि या अय्युहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। बस शायद के दिल के दरवाजे पे दस्तक जो रमज़ान में हो रही है, हम हिदायत के लिए दरवाज़ा खोल दें। एक दफ़ा हिदायत के लिए दरवाज़ा खुल जाए ना, फिर बंद नहीं होता आराम से, ये भी आपको बता दूँ। खुलता भी देर से, और खुलने के बाद एकदम बंद भी नहीं होता। हिदायत का दरवाज़ा ऐसे नहीं बंद होता, इल्ला ये कि आप धक्का दे के बंद करें। अल्लाह अकबर कबीरा। इस किताब को थाम लें, सारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी, सारी कमी बेशी दूर होगी, और आपको अल्लाह ताला आपने लिए चुनेगा। आज दुआ तो कीजिए, अल्लाह इस किताब के लिए चुन ले, खालिस कर दे मुझे, मेरे अंदर के खोट कपट को निकाल दे। क्या अमल करने हैं उसके लिए? अल्लाह के कलाम पे खुशियाँ मनाएं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन वो होगा जिस दिन ये किताब आपकी ज़िंदगी में आएगी, और सबसे बड़ी खुशी का मौका आपका होगा जिस दिन ये कुरान मुकम्मल होगा और आप डरते दिल के साथ अगले कोर्स में दाखिल होंगे, और ये हर कोर्स के शुरू और एंड पे होगा आपके साथ इंशाल्लाह। फिर गौर व फिक्र की आदत डालनी है, इल्म रखना है, अल्लाह ताला की तरफ पलटने का यकीन रखना है, अपनी मर्जी से हलाल और हराम के फैसले नहीं करने, और शुक्र अदा करना है। और आगे है रुकू नंबर 12 आयत 61 से 70, हर चीज़ अल्लाह सुबहाना ताला की नज़र में है, लिहाजा खुद को उससे दूर ना समझो। वमा तकूनु फी शअनि वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरआन, दोबारा लफ्ज़ कुरान आया हाईलाइट कर लें, एंड पे बताइएगा टोटल कितनी दफ़ा लफ्ज़ कुरान गुजरा। और आप किसी हाल में हो, आप कहीं से ही कुरान पढ़ते हो और जो काम भी करते हो, हमको सब की खबर रहती है। जब तुम इस काम में मशगूल होते हो और आपके रब से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी गायब नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमान में, और ना कोई चीज़ इससे छोटी और ना कोई बड़ी, मगर ये सब किताबे मुबीन में है। क्या पता चला कि अल्लाह ने कुरान की तिलावत के साथ आपको मुझे जोड़ दिया। इस आयत 61 पे एक हदीस आती है सही बुखारी में 5020। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल जो कुरान तिलावत करता है संतरे जैसी है, ऑरेंज, जिसका मज़ा भी लजीज होता है और जिसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। और जो मोमिन कुरान की तिलावत नहीं करता, इसकी मिसाल खजूर की सी है, यानी इसका मज़ा तो उम्दा है लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती। कितनी प्यारी मिसाल है, आप देख रहे हैं, कुरान पढ़ने के बाद अब आप ऑरेंज बन रही हैं, खुशबू भी, स्मेल अच्छी, टेस्ट अच्छा, कलर अच्छा। इससे पहले हम खजूरें ही थी, काली सड़ी हुई, शक्ल अच्छी नहीं लेकिन टेस्ट भी अच्छा और फ़ायदे भी उसमें बहुत हैं। यदि मोमिन में हर हाल में खैर है, बस अपनी खैर को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बरक्स और बदकार यानी मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है रईहाना की है, रीह खुशबू को कहते हैं अरबी में ना, उसी से ये लफ्ज़। इसकी खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन मज़ा कड़वा होता है। इस बदकार की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी नहीं करता इंद्राइन की सी होती है। इंद्राइन क्या है? वो जिसके अंदर से आप छील के पानी निकालते हैं, एलोवेरा, कौड़ा जहर, कड़वा होता है ना, कांटों से भरा हुआ, जिसका मज़ा भी कड़वा होता है और इसमें कोई खुशबू भी नहीं होती, तो आपने क्या बनना? ऑरेंज इंशाल्लाह। तो मोमिन फिजिकली भी खूबसूरत होता है, अल्लाह उसमें कशिश भी डाल देता है। अब अगली आयत में औलिया अल्लाह कौन है, ज़रा उनकी तारीफ सुनिए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा है ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फ़र्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और आपको इनकी बातें गम में ना डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता और जानता है। याद रखो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, ये सब कुछ अल्लाह ही का है। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं? महज बेसनद ख्याल का इत्तबा कर रहे हैं और महज अटकेलियाँ लगा रहे हैं। अल्लाह अकल खोल दे, याद रखिए मुशरिक की मत मारी जाती, उसको पता भी नहीं चलता मैं कर क्या रहा हूँ। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का जरिया। तहकीक इसमें दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं। इसी की मलकियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं कि अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं यानी झूठ बोलते हैं, वो कामयाब ना होंगे। ये दुनिया में थोड़ी सी ऐश है, फिर हमारे पास इनको आना है, फिर हम इनको इनके कुफर के बदले सख्त अजाब चुकाएंगे। अल्लाह तजल्ल मिनहुम। आप देखिए कि कैसे अल्लाह ताला ये चीज़ें खोल खोल कर आपको मुझे बता रहे हैं कि इस दुनिया में फिक्र कर लो, अपनी भी और दूसरों की भी। आप देख रहे हैं कि कितनी सॉफ्ट सूर है ना, सिर्फ तदब्बुर है इसमें, कोई दिमाग पे बोझ डालने वाले नुक्ते नहीं है, मदनी सूरतों वाला अंदाज नहीं है मक्की सूरतों का। बस कायनात पे गौर। मुझे ऐसे लगता है कुरान पढ़ो तो अल्लाह से मोहब्बत करो, कायनात को देखो तो अल्लाह से मोहब्बत करो। अच्छा, जब अल्लाह से मोहब्बत हुई, अल्लाह की मार्फत हो गई, तो तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो शिर्क खत्म हो जाएगा। फिर कोई करनी भरनी वाला नहीं रहता, फिर सब कुछ अल्लाह अल्लाह। बेटे भी वो देता, माल भी वही देता, औलाद भी वही देता। तो पूरी सूरत जितनी अभी तक पढ़ी है ना, इसमें आपको तीन चीज़ें नुमायाँ दिख रही हैं, एक तो कुरान, और दूसरा शिर्क का रद, और तीसरी क़यामत। अल्लाह ने अकल भी दी, समझ भी दी, अगर फिर भी ना कोई माने तो क्या माने। तबरानी की एक रिवायत है, 1845 उसका नंबर है, कि अल्लाह ने अकल से कहा कि अकल, इस कायनात में मैंने तुझसे अफजल, तुझसे हसीन और तुझसे बेहतर मखलूक पैदा नहीं की। अकल बड़ी प्यारी चीज़ है, शर्त एक है, अकल सलीम हो, शातिर ना हो, कुरान सुन्नत के अंदर रहे। तो आपको मुझे अकल इस्तेमाल करके अल्लाह की तरफ आना है। अल्लाह करे कि हम अपनी अकलों का सही इस्तेमाल करें। अमल के नुक्ते नोट कीजिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए अल्लाह ताला से डर के रहना है, उस पर ईमान लाना है, लोगों की बातों से गम में मुब्तला नहीं होना, और तवज्जुह से सुनना है, शिर्क नहीं करना और कुफर नहीं करना। अब यहाँ से आगे सूरत में अंबिया कराम के तज़किरे, आपको याद होगा सूरत अल अराफ में एक आयत आई थी कि इल्ला नकीदा, ज़मीनें खेज भी होती हैं, फर्टाइल भी, और कुछ नकीदा जिसमें सिर्फ झाड़ फूंक होती है। और उसके बाद अम्बिया कराम के किस्से शुरू हुए थे। यहाँ भी देखिए कैसे कायनात में से खूबसूरत मिसालें लेकर अब अल्लाह ताला हजरत यूनुस का किस्सा लाते हैं हमारे सामने। 71 से 82 है, रुकू नंबर 13। रब की तरफ लोगों को बुलाना है इस्तकामत के साथ, किसकी तरह? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह। वत्लु अलैहिम नबअ नूहिन इज़ क़ाला लिक़ौमिही, और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है, तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर बिमा अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस ना होनी चाहिए, फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत ना दो। क्या आपको इसमें हज़रत नूह का कॉन्फिडेंस दिख रहा है? हक वाला इतना ही कॉन्फिडेंट होता है, उसको किसी की मरूबियत नहीं होती, ना वो दबता है ना वो झुकता है। फिर भी अगर तुम्हें राजी किए जाओ तो मैं तो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है, और मुझको हुक्म किया गया कि मैं मुसलमानों में से रहूँ। ये सेकंड पॉइंट नोट कर लें, जो लोग किसी से कुछ लेते नहीं है ना, उनके आगे दबते भी नहीं है। जिनकी नज़रें अल्लाह के ख़जानों पे होती है ना, वो लोगों की दौलत माल घरों पे नज़र नहीं रखते, और ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आप देखिए कि जब लोगों पे नज़र रखेंगे ना, तो फिर लोगों को खुश करेंगे, नहीं, इनको नाराज़ नहीं करना, ये चंदा देते हैं, ना ना ना, मस्जिद में कालीन इन्होंने बिछाया था, अच्छा अब इनका बेटा जो कह रहा है कर लो। फिर वो ना अपने इशारों में नचवाते हैं कभी कभी। हमेशा अल्लाह पे नज़रें लगाइए, जैसे अम्बिया ने लगाई, इसलिए उनकी दावत बड़ी बेलाग, साफ सुथरी, क्लीन एंड क्लियर थी। आगे फरमाया आयत 73, सो वो लोग इनको झुटलाते रहे, बस हमने इनको और जो इनके साथ कश्ती में सवार थे निजात दी, और इनको जानशीन बनाया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनको गर्क कर दिया। बस देखना चाहिए कि कैसा इंजाम हुआ इन लोगों का जो डराए जा चुके थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो इनके पास रोशन दलीलें लेकर आए, बस जिस चीज़ को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया, ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। अल्लाह ताला इस तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर यानी बंद लगा देता है। फिर पैगम्बरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और इसके सरदारों के पास अपनी निशानियाँ देकर भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची, तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरीख जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस सही दलील की निस्बत जबकि तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। और वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, और हम तुम दोनों को कभी भी न मानेंगे? और फिरौन ने कहा, मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो, जब वो जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो तुम डालने वाले हो, यानी टेक योर टर्न। फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो कुछ तुम लाए हो ये तो जादू है। यकीनी बात यह है कि अल्लाह इसको भी दरहम बरहम किए देता है। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम नहीं बनने देता, और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, गो के मुजरिम कैसा ही नागवार समझे। क्या पता चला दोबारा मूसा का और फिरौन का किस्सा? ये बताता है कि हक की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। पीछे नुह की बात थी, बीच के सारे नाम स्किप करके मूसा पे बात ला दी गई ताकि लोगों को पता चल जाए कि हर दौर के नबी ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही लोगों को दीन की तरफ बुलाया। फिर दूसरी बात देखिए कि फिरौन ने भी तो वो सब कुछ देखा, लेकिन माना क्यों नहीं? क्योंकि दिल में तासुब था। आज भी इस कुरान को तासुब के बगैर कोई सुने सुनाएगा ना तो इम्प्रेस होगा, और दिल में गुस्सा और ग्रज रखकर कोई पढ़ेगा या सुनेगा ना तो कहेगा सब ऐसे ही है, ठीक है, हम भी तो ऐसी बातें कह सकते हैं। मक्काले भी कहते थे ये क्या बात है, मोहम्मद कहता है हम भी ऐसे कर सकते हैं, तो अल्लाह ने चैलेंज कर दिया तो कोई क्यामत तक नहीं आएगा और ना आ सका। तो क्या पता चला कि ये सारे किस्से जो बार बार हम पढ़ते हैं ये हमारी अपनी इसलाह के लिए हैं। अल्लाह की रजा पाने के नुक्ते नोट कीजिए, अल्लाह की आयात के साथ नसीहत करनी है, अल्लाह तआला पर भरोसा रखना है, दावत हक से मुंह नहीं मोड़ना, फसाद नहीं करना, तकबर नहीं करना, और अल्लाह के रसूलों और आयात को नहीं झुटलाना। अब आगे अंधेरों में रोशनी की एक किरण, यूथ का रोल दिखेगा। आयत 83 से 92। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की जात पे, फमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रिया। ये भी एक बड़ी अहम बात है, जिनके बड़ों ने झुटलाया होता है ना नबियों को, उनके यंग बच्चे उसी नबी के साथी बन जाते हैं। सुनिएगा, बस मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन और अपने काम से डरते डरते कि कहीं इनको तकलीफ पहुंचाए। और वाकई में फिरौन इस मुल्क में जोर रखता था, और ये भी बात थी कि वह हद से बाहर हो जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने तो अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इन जालिमों के लिए फितना न बनाना, और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और नमाज के पाबंद रहो, और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हमारे रब, तूने फिरौन को और इसके सरदारों को सामान जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दे दिए, ऐ हमारे रब इसी वास्ते दिए कि ये तेरी राह से गुमराह करें, ऐ हमारे रब इनके मालों को नीस्त व नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, बस ईमान न ला पाए यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब को देख लें। देखिए अपने लिए बददुआ खुद ही ले ली। दौलत अक्सर लोगों को रास नहीं आती, आपने देखा कभी कुछ इंजेक्शन रिएक्ट कर जाते हैं? पेंसिलिन का इंजेक्शन बड़ा फेमस है, इसीलिए पहले पैच टेस्ट करते हैं ना थोड़ी सी जगह पे कुछ लगाकर। दौलत अक्सर लोगों को रिएक्ट कर जाती है, कहते हैं इंजेक्शन रिएक्शन ना दे दे। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग, और अगर आप भी उसी में तो आप अपनी खुशकिस्मती पे भी अल्लाह का शुक्र कीजिए कि दौलत भी हो और हिदायत भी हो और खैर के रास्तों में वो इस्तेमाल भी हो रही हो। और इसमें एक और बात भी समझ आ गई आपको मुझे, कि जितना ज़्यादा अल्लाह सुबहाना ताला आपको दुनिया और दीन की नेमतें देते जाएं उतनी ज़्यादा आपके अंदर आजजी आने लगे। तो अल्लाह ताला ने फिरौन और मूसा के सारे किस्से में आपको मुझे ये बात बता दी कि अपने आप को बेहतरी के साथ रखो। फिर आगे क्या फरमाया? हक ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है, बस तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। जवाब दिया गया आल आना, बड़ी देर की मेहरबा आते आते। कलमा जुबान पे आते आते देर हो गई, वक्त ही निकल गया। अभी मान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, बस आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बात हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। क्या पता चला कि सामने मौत खड़ी हो जाए, फिर मान जाना, ये तो फिरौनियत है। आप देखिए कि जादूगरों ने मूसा के मौजजे को देखकर समझ लिया कि मूसा जादूगर नहीं है, क्योंकि मूसा का जो सांप है वो महज सांप नहीं था, वो अल्लाह की ताकत थी। काकुल हक और इब्ताले बातिल कर रहा था। अल्लाह ने ऐसे काम कर करा के लोगों को दिखा दिया कि तुम जो बात नहीं मानोगे तुम्हारी यंग नस्ल इसी बात को मानेगी। फिर इसमें घरों को किबला बनाने की बात हुई, ये क्या है? यानी जब बाहर की दुनिया में पाबंदियां लग जाएं तो घरों में रहकर काम करो, काम नहीं छोड़ना, वरना तुम बिल्कुल रस्टी हो जाओगे और फिर इंसान के अपना दीन भी खतरे में पड़ जाता है। फिर अमल के नुक्ते नोट करते हैं। साबित कदम रहना है, अल्लाह का फरमा बरदार बनना है, नमाज कायम करनी है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है और हद से नहीं गुजरना, और इल्म रखने वालों के रास्ते की पैरवी करनी है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है रुकू 93 से 103। अल्लाह की आयात में शक नहीं करना। वलकद बव्वअना बनी इसराइल, और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया रहने को, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, लेकिन फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया। कितनी बदनसीबी है। यहाँ तक इनके पास इल्म पहुँच गया, यकीनी बात यह है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन उमूर में फैसला करेगा जिन पर वो इख्तलाफ करते थे। फिर अगर आप इनकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप इन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है। आप हरगिज़ शक करने वालों में ना हो और ना इन लोगों में से हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया, कहीं आप खसारा पाने वाले ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे। इसको हाईलाइट कीजिए और दुआ करें अल्लाह में ऐसे लोगों में ना करें। वो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को ना देख लें। चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि उनका ईमान लाना इनको नाफे होता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनिया की ज़िंदगी में इनसे टाल दिया और इनको एक वक्त ख़ास तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग सब के सब ईमान ले आते। इसको हाईलाइट करें। तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन ही नहीं, और अल्लाह ताला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। ये क्या बात हो रही है, अभी इस पर करते हैं बात। आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या क्या चीज़ें आसमानों में हैं और जो लोग ईमान नहीं लाते इनको निशानियाँ और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाती। बस वो लोग सिर्फ इन लोगों के वाक़यात का इंतज़ार कर रहे हैं जिनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए अच्छा तो तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ, फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं। इसी तरह हमारे ज़िम्मे है कि हम ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। क्या खूबसूरत आयतें हैं, अंदाज़ा आपको हुआ कैसे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और पिछले अम्बिया को भी मेरे आपके सामने एक मिसाल बना दिया कि सामने फिरौन ही क्यों ना हो, अल्लाह दरियाओं में रास्ते बना देगा। शर्त एक है कि तुम्हारा ईमान मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान वाला हो, और दूसरी बात यह है कि आपस में इख्तलाफ करने लगे अल्लाह ने उनको हिदायत से दूर कर दिया। क़यामत के दिन तो लग पता जाएगा, दुनिया में भी ये बातें छुपती नहीं हैं। आगे हम अल्लाह की रज़ा को पाने वाले अमाल नोट करें। अगर तो ईमान लाना, शक में मुबतला नहीं होना, अल्लाह की आयतों को नहीं छुटलाना, अक़ल से काम लेना, अल्लाह ताला की निशानियों पे ईमान लाना, और इल्म आ जाने के बाद बाहम इख्तलाफ नहीं करना। इसकी तो दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमारे दिल जुड़े ही रहें। फिर आगे रुकू नंबर 16, 104 से 109, 104 से 109, قل یا ایہا الناس، فائدے اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، آپ نے نوٹ کیا کہ سورت میں یا ایہا الناس بھی بہت جگہ ہے، تو قرآن کے ساتھ جوڑیے رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام. آپ اور میں کسی کے اور رب کے بیچ میں نہیں آ سکتے. اللہ پتہ نہیں کس کے دل کو کھول دے اور اس کو اسلام دے دے. تو کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. سچ کیا عقیدہ اس کے مطابق ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. اور اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق آ پہنچا تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے پس وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ رہنا اسی پر پڑے گا، اور تم پر میں مسلط نہیں کیا گیا. اور آپ اسی کی پیروی کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا، رضا الہی کو پانے والے اعمال، ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین حنیف پہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، دین میں شک نہیں کرنا، وحی کی پیروی کرنا اور صبر کرنا، اور ہدایت پر چلنا. تو یہاں پہ سورت یونس بڑی خوبصورت طریقے پہ اینڈ ہوتی ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک اللہ، اور دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کرنی ہے. پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ یعنی کوئی بک ضرور پڑھیے توحید اور شرک کے فرق پہ. کیا میں نے اپنے رب سے معافی مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں اپنے رب کی طرف پلٹنا سیکھ چکی ہوں؟ کیا میں نے حق کی دعوت دینے کا ارادہ کر لیا؟ اور اللہ آپ کے میرے لیے آسان کرے.